श्री परमात्म ने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 34, मृत्यु आदि विभूतियों का कथन। क्या मृत्यु से डरना चाहिए या उसे एक नई शुरुआत मानना चाहिए? क्या कीर्ति, स्मृति, क्षमा, बुद्धि, धृति जैसे स्त्रियों के गुणों को हमने कम आंका है? आज के श्लोक में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये सब उनकी दिव्य विभूतियां हैं। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने जाना कि भगवान कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षयः कालः। हमने सीखा कि संवाद की जड़, जीवन के द्वंद्व और समय का महत्व कैसे हमारे जीवन में लागू होता है। मृत्युः सर्वहर्षचाहं उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। भावार्थ, मृत्युः सर्वहरः, मैं वह काल हूँ जो सब कुछ हर लेता है। उद्भवः भविष्यताम्, मैं ही भविष्य के सभी प्राणियों का जन्मदाता हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, यह सब मैं हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भयहरं सर्व लोकैक नाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिष्ते गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यांतर न विदुह सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम्। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
मृत्यु आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 34। मृत्युः सर्वहर्ष चामुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। उच्चारण की विधि। मृत्युः सर्वहरः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीयः वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। 34। शब्दार्थ। अहम् अर्थात मैं, सर्वहरः अर्थात सबका नाश करने वाला, मृत्युः अर्थात मृत्यु, च अर्थात और, भविष्यताम् अर्थात उत्पन्न होने वालों का, उद्भवः उत्पत्ति हेतु हूँ, च अर्थात तथा, नारीणाम् अर्थात स्त्रियों में, कीर्तिः अर्थात कीर्ति, श्रीः अर्थात श्री, वाक् अर्थात वाक्, स्मृतिः अर्थात स्मृति, मेधा अर्थात मेधा, धृतिः अर्थात धृति, च अर्थात और, क्षमा अर्थात क्षमा, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 34 व्याख्या मृत्युः सर्वहर्षचाहम्। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मौका कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही है। उद्भवश्च भविष्यताम्, जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं, वैसे ही यहां बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। कीर्तिया श्रीर वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिया क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमाएं पांच प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री, महर्षि भृगु की कन्या है और वाक, ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमाएं सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, यह दो प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, मैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित, विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये तीन प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये चार प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहां जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं। कारण कि यह दैवी, भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई। कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मानस सात एक सौ तेरह एक। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा।
आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, मृत्यु से भय, भविष्य को लेकर चिंता, स्त्री गुणों का समाज में कम आंकना, मानसिक असंतुलन, धैर्य और क्षमा की कमी। समाधान, सॉल्यूशंस। मृत्यु को अंत नहीं, बदलाव मानना आत्मा अमर है। ईश्वर पर विश्वास करना कि हर उद्भव उसी की योजना है। स्त्रियों के गुणों को अपनाना, कीर्ति से प्रेरणा, वाणी से संयम, स्मृति से ध्यान, मेधा से निर्णय, धृति से नियंत्रण, क्षमा से संबंध सुधार। यह गुण केवल स्त्रियों के लिए नहीं, हम सभी के लिए आवश्यक हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था, श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्त्रियों में कौन कौन से गुणों को अपनी विभूति बताया है? अ, वाणी, धन, सौंदर्य। बी, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। सी, भक्ति, श्रद्धा, सेवा। डी, यश, दया, बुद्धि। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सही उत्तर है बी, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। क्यों? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, नारीणा कीर्तिह, श्रीह, वाक, स्मृतिह, मेधा, धृतिह, क्षमा एषा मम विभूत्या। इन सात गुणों को नारी का सार और भगवान की दिव्य शक्ति बताया गया है जो समाज को सुंदर बनाते हैं। कल जानिए, सामवेद, ऋतुओं में वसंत और काव्य में श्री कृष्ण कौन है? श्लोक 10.35 हमें ईश्वर की संगीत, ऋतु और सौंदर्य की शक्तियों से परिचित कराता है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद्गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद्गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद्गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद्गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अनवाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, दो लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए, गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर